लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे उन नए शहीदों के लिए याचना करते हैं जो विश्व के विभिन्न भूभागों में सुसमाचार के खातिर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। हमारी प्रार्थना है कि वे अपने साहस और मिशनरी उत्साह से कलीसिया को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। उपहासक को भगा दो और झगड़ा मिट जाएगा, वाद विवाद और अपमान का अंत हो जाएगा। जिसे हृदय की पवित्रता प्रिय है और जिसकी बातों में मधुरता है, उसे राजा अपना मित्र बनाता है। प्रभु की आंखें ज्ञान की रक्षा करती हैं, वह दुष्ट की बातों को व्यर्थ कर देता है। श्रोताओं, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 22वें अध्याय के 10 से लेकर 12 तक के पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत हमने इन्हीं पदों की विस्तृत व्याख्या की थी। श्रोताओं, उपहास करने वाला, ठट्टा करने वाला मन मुटाव फैलाता और झगड़े का कारण बनता है। जब वह निकाल दिया जाता है तब विवाद भी समाप्त हो जाता है। ये पद हमें याद दिलाते हैं कि विवाद, कलह और तिरस्कार के माहौल का कारण हैं लोग। ऐसे लोगों के विपरीत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हृदय की पवित्रता को पसंद करते हैं, जिनकी बातों में मधुरता होती है, जिनके होठों पर कृपा होती है, क्योंकि आंतरिक पवित्रता प्रायः कृपापूर्ण शब्दों के माध्यम से प्रकट होती है। लेखक कहता है कि राजा भी उसका मित्र होगा। श्रोताओं, सच्ची भक्ति और बुद्धिमता व्यक्ति के अंतर से आती है और मौखिक शब्दों में प्रकट होती है। इसलिए राजा और प्रशासक सभी सच्ची भक्ति और विवेक से परिपूर्ण व्यक्तियों की संगति पसंद करते हैं, उन्हें उच्च स्थानों पर नियुक्त करते तथा उन्हें अपने मित्र बना लेते हैं। आप किसी से भी बात करें, जो कुछ भी बोलें, आपके शब्दों में मिठास होनी चाहिए। आप सदैव मधुरता का प्रयास करें और आपकी मीठी बोली आपको सफलता की चोटी तक ले जाएगी। मनुष्य का ऐसा आचरण उसे निश्चित रूप से ईश्वर के साथ निरंतर संगति में योगदान प्रदान करेगा। आगे लेखक कहता है, प्रभु की आंखें ज्ञान की रक्षा करती हैं, वह दुष्ट की बातों को व्यर्थ कर देता है। यहां इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है कि प्रभु ईश्वर ज्ञान को संरक्षित करने के लिए विशेष देखभाल करते हैं, अर्थात मानव जाति के भ्रष्टाचार और मनुष्य के दिमागों को अंधा करने की शैतान की चालाकियों के बावजूद मनुष्यों के बीच स्वयं का और अच्छे और बुरे का ज्ञान बनाए रखते हुए दुनिया में प्रभु ईश्वर भलाई को, धर्म को बनाए रखते हैं। ईश्वर प्रज्ञा के, बुद्धिमता के और विवेक के ईश्वर हैं, और जो मनुष्य ईश भक्ति में लगते तथा ईश नियमों का पालन कर अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें वे प्रज्ञा, बुद्धिमता और विवेक का वरदान देते हैं। श्रोताओं, ईश्वर की आंखों की शक्ति और अच्छाई उनकी सतर्क कृपा का एक अद्भुत उदाहरण है। ईश्वर ज्ञानियों, बुद्धिमानों और भले लोगों तथा विशेष रूप से वफादार गवाहों को संरक्षित रखते हैं। इसके विपरीत जो लोग दुष्ट होते हैं, दुष्टता के मार्ग पर चलकर लोगों को उत्पीड़ित करते हैं, प्रभु उनके सभी कामों को असफल कर देते, उनकी सारी बातें व्यर्थ हो जाती हैं। अस्तु श्रोताओं, हम यह स्मरण रखें कि ईश्वर ऐसों की रक्षा करते और उनकी युक्तियों को सफल करते हैं जो उन पर भरोसा करते हैं। ईश्वर अपनी कृपा से उनमें ज्ञान को सुरक्षित रखते, उनमें और उनके द्वारा भले कामों को और भलाई को अंजाम देते। कोई भी आपत्ति आए, प्रभु ईश्वर भलाई पर चलने वालों की प्रार्थना सुनते तथा उन्हें सुख शांति का वरदान देते हैं। अब आइए सूक्ति ग्रंथ के 22वें अध्याय के 13वें और 14वें पदों पर दृष्टिपात करें। लेखक कहता है, आलसी कहता है सिंह बाहर खड़ा है, सड़क पर निकलने पर वह मेरा वध करेगा। व्यभिचारिणी का मुंह गहरा गड्ढा है, जिस व्यक्ति पर प्रभु अप्रसन्न है वह उसमें गिरेगा। श्रोताओ, जिन लोगों को अपने व्यवसाय से कोई प्यार नहीं है, जो आलसी हैं, वे कभी भी दिल से काम नहीं करते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आलस्य से शरीर ही नहीं आत्मा से भी बर्बाद हो जाते हैं, फिर भी उनके पास अपने बारे में कहने के लिए कुछ न कुछ होता है, इसलिए कि आलसी लोग खुद को और अपनी आत्मा को धोखा देने में चतुर होते हैं। कह देते हैं, सिंह बाहर खड़ा है, मैं कैसे घर से निकलूं, सड़क पर निकलने पर वह मेरा वध करेगा, और बस इसी झूठ मूठ के बहाने वे कोई काम नहीं करते, यानी कि सुस्त बैठने के लिए उन्हें बस बहाने की जरूरत होती है। कई तो ऐसे होते हैं जो काल्पनिक कठिनाइयों से अपने वास्तविक कर्तव्यों से डरते हैं। आलसी आदमी को खेतों में काम करना होता है, लेकिन वह कल्पना कर लेता है कि वहां एक शेर है, जबकि यह उसका केवल एक बहाना होता है। वह दिखावा करता है कि वह सड़कों पर चलने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि उसे डर है कि कोई न कोई उसे मिलेगा और उसे मार डालेगा। फिर लेखक व्यभिचारिणी स्त्री की निंदा करता है, ऐसी स्त्री की निंदा जो किसी को भी प्रलोभन में डालने से नहीं चूकती, जो घरों को फोड़ने में माहिर होती है। कहता है, ऐसी स्त्री का मुंह एक गर्त है, गड्ढा है, और उस गड्ढे में वह व्यक्ति गिरता है जिस पर प्रभु अप्रसन्न रहते हैं। प्रश्न उठता है कि प्रभु किसी से क्यों अप्रसन्न रहते हैं? शायद ऐसे व्यक्तियों से जो आलसी होते हैं, जो अपने दायित्वों को नहीं निभाते, जो ईश नियमों को जानते हुए भी उनका उल्लंघन करते हैं, ऐसे ही व्यक्तियों से ईश्वर अप्रसन्न रहते हैं। फिर 22वें अध्याय का 14वां पद सभी नव युवकों को अशुद्धता की अभिलाषाओं के विरुद्ध चेतावनी देता है। चूंकि वे अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में सोचते हैं, इसलिए उन्हें पराई स्त्रियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनके प्रति उन्हें पराया होना चाहिए। पराई स्त्रियों के मुंह पर, उनके होठों के चुंबन पर, उनके होठों के शब्द, उनके आकर्षण और प्रलोभन से बचना चाहिए। उनसे डरा नहीं जाए, बल्कि अपने नैतिक बल पर उनका सामना किया जाए और उन्हें अपने जीवन और परिवार से दूर हटाया जाए। यदि व्यक्ति ऐसा नहीं करते तो वे खुद अपने लिए और अपने परिजनों के लिए एक गड्ढा खोदते हैं। ऐसे पुरुष ईश्वर से दूर हो जाते हैं, वे जीवन के उन नियमों को भूल जाते हैं जो हमारे समाज और परिवार की आधारशिला है। और फिर 15वें पद में लेखक कहता है, नव युवक के हृदय में जो मूर्खता घर कर गई है, उसे अनुशासन की लाठी निकाल देगी। श्रोताओ, नव युवक के हृदय में मूर्खता से अभिप्राय स्पष्ट है, क्योंकि जवानी में ही युवक युवतियां मूर्खता कर बैठते हैं। मूर्खतापूर्ण कार्य करने की उनमें आंतरिक प्रवृत्ति होती है। केवल कड़वे अनुभवों के बाद ही उनके समझ में आता है कि उन्होंने क्या किया। अनुशासन और संयम बरतने के बाद ही अपनी गलतियों का वे पता लगा पाते हैं, उसके लिए पश्चाताप होता है और गलतियों को सुधारने का मार्ग निकाला जा सकता है। यह भी याद रखना आवश्यक है कि मूर्खता के इलाज के लिए सुधार आवश्यक है, इसे उचित तरीकों और सौम्य तरीकों से बाहर नहीं निकाला जा सकता। इसमें सख्ती और गंभीरता की जरूरत होती है, अनुशासन की नितांत आवश्यकता होती है। अनुशासन की प्रक्रिया भले ही कठोर हो, इससे हिम्मत न हारी जाए। इब्रानियों को प्रेषित पत्र में संत पॉल धर्म ग्रंथ के उपदेश की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए लिखते हैं, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो, उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है।
वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप फ्रांसिस ने बृहस्पतिवार को आदिवासी लोगों के ज्ञान एवं विज्ञान, लचीलेपन के लिए कमजोरियों और समाधान पर ज्ञान और विज्ञान का समायोजन कार्यशाला के प्रतिभागियों से वैटिकन के क्लेमेंटीन सभागार में मुलाकात की और उन्हें वर्तमान जलवायु एवं पर्यावरण संकट से निपटने के लिए आदिवासी प्रज्ञा को सुरक्षित रखने एवं महत्व देने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यशाला का आयोजन विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के लिए गठित परमधम पीठे अकादमी के तत्वाधान में किया गया है, जिसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि और खाद्य एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के खतरों सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिक व्यापक, समृद्ध एवं मानवीय दृष्टिकोण के लिए ज्ञान के इन दो रूपों को जोड़ना। पोप ने पहल को समर्थन देने हेतु परमधम पीठ अकादमी को धन्यवाद देते हुए कहा, यह आदिवासियों के ज्ञान के महान मूल्य को स्वीकार करने और समग्र एवं सतत मानव विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। संत पापा ने गौर किया कि 3 साल पहले संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने आदिवासी खाद्य प्रणालियों पर अध्ययन दिवस घोषित किया था। उसी ने एक ऐसे मंच को जन्म दिया जिसने आदिवासी लोगों की खाद्य प्रणालियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बातचीत को आगे बढ़ाने हेतु आदिवासियों एवं गैर आदिवासी वैज्ञानिकों, छात्रों और विशेषज्ञों को एक साथ लाया है। पोप के अनुसार कार्यशाला का मकसद इसी मंच को योगदान देना है। संत पापा ने कार्यशाला को आपस में एक दूसरे को सुनने में वृद्धि करने का अवसर बतलाया। आदिवासी लोगों को सुनने, उनके ज्ञान और उनकी जीवन शैली से सीखने और साथ ही वैज्ञानिकों को सुनने का अवसर, ताकि उनके शोध से लाभ उठाया जा सके। उन्होंने कहा, कार्यशाला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से सरकारी अधिकारियों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को एक संदेश मिलेगा कि वे बृहद मानव परिवार के भीतर समृद्ध विविधता को स्वीकार करने और उसका सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करें। संत पापा ने विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं, आध्यात्मिकताओं और भाषाओं की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहन दिया, क्योंकि इन चीजों का खोना हम सभी के लिए ज्ञान, पहचान एवं स्मृति की दरिद्रता का प्रतीक है। यही कारण है कि उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक अनुसंधान की परियोजनाओं और तदनुसार निवेश को मानव भाईचारे, न्याय और शांति को बढ़ावा देने के लिए निर्णायक रूप से निर्देशित किया जाना चाहिए, ताकि हमारे आम घर, पृथ्वी और लोगों के परिवारों के सामने आने वाली तत्काल चुनौतियों का जवाब देने के लिए संसाधनों का समन्वय और आवंटन किया जा सके। पोप ने कहा कि कार्यशाला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आदिवासी ज्ञान और विज्ञान पूर्वजों की प्रज्ञा एवं विज्ञान के बीच खुली वार्ता जल जलवायु परिवर्तन भूखमरी और जैव विविधता जैसे गंभीर मुद्दों का सामना नए समग्र और अधिक प्रभावशाली तरीके से करने में मदद कर सकती है। उन्होंने कहा, जैसा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं ये सभी मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं। संत पापा ने इस दिशा में सकारात्मक चीन के लिए संतोष व्यक्त किया क्योंकि सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दशक के मुख्य घटक के रूप में संयुक्त राष्ट्र ने आदिवासी ज्ञान को भी शामिल किया है। उन्होंने कहा, इस चिन्ह को एकजुट होकर प्रोत्साहन एवं समर्थन देना चाहिए। आदिवासी ज्ञान एवं विज्ञान के बीच संवाद में हमें यह स्पष्ट रूप से ध्यान रखना होगा कि ज्ञान की इस संपूर्ण विरासत को अहिंसक तरीके से संघर्षों पर काबू पाने और गरीबी तथा गुलामी के नए रूपों का सामना करने के साधन के रूप में नियोजित किया जाए। उन्होंने कहा, ईश्वर जो सभी मनुष्यों एवं अस्तित्व में मौजूद हर चीज के निर्माता और पिता है, आज हमें सार्वभौमिक भाईचारा स्वतंत्रता न्याय संवाद आपसी मुलाकात प्रेम और शांति के लिए हमारे मानवीय बुलाहट को जीने और साक्ष्य देने तथा नफरत आक्रोश विभाजन हिंसा एवं युद्ध को हवा देने से बचने के लिए बुलाते हैं। संत पापा ने याद दिलाया कि ईश्वर हमें ग्रह के मालिक नहीं बल्कि उसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी दी है। अतः हमें संसाधनों को बर्बाद करने असमानता शोषण और विनाश को बढ़ाने के बजाय आम घर की सेवा में प्रतिबद्ध होना चाहिए जिससे कि हमारी भावी पीढ़ी के जीवन की रक्षा की जा सके। अंत में संत पापा ने आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधियों को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया और आदिवासियों को कलीसिया के समर्थन का आश्वासन देते हुए प्रोत्साहन दिया कि वे अपने पूर्वजों की प्रज्ञा और वैज्ञानिक शोध के परिणामों से प्रेरित होकर सच्चाई स्वतंत्रता वार्ता न्याय और शांति की सेवा में सहयोग दें। घर परिवारों की समस्या और देश दुनिया की दुखद खबरों से परेशान लोगों को संत पापा ने एक नई ऊर्जा प्रदान करने की कोशिश की है। उन्होंने बृहस्पतिवार को एक संदेश के माध्यम से कहा, ईश्वर ने सर्वप्रथम हमें प्यार किया, हमारा इंतजार किया और हमें निरंतर प्यार करते हैं। यही हमारी पहचान और हमारी ताकत है कि हम ईश्वर के प्रिय संतान हैं। गोवा और दमन के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल फिलिप ने कार्तिक धर्म सामाजियों को एक आशीर्वाद कहा है क्योंकि वे कलीसिया को पुनः जवान बनाते हैं। भारतीय धर्म संघों के सम्मेलन की गोवा शाखा की आम सभा को संबोधित करते हुए कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ ने कहा, आप कलीसिया की पौत्रता को सेवा देते हैं। हमें आपकी एक नबी के समान आवाज और कार्य की जरूरत है। आप पूरी कलीसिया को धर्म सभा के रास्ते पर चलना सिखा सकते हैं। गोवा की राजधानी में 8 मार्च को आयोजित कार्यक्रम में करीब 300 से अधिक धर्म सामाजियों ने भाग लिया। अक्टूबर 2023 को रोम में आयोजित सिनट में भाग लेने वाले धर्माध्यक्ष ने वहां के अपने अनुभव को साझा किया। कार्डिनल ने याद किया कि धर्म सभा एक साथ यात्रा करने का अनुभव था। धर्म सभा में सभी को एक समान महत्व दिया गया। बैठने की कोई पदानुक्रमित व्यवस्था नहीं थी। कलीसिया में हमारी हैसियत कुछ भी हो, हम सभी एक ही गोल मेज के चारों ओर बैठे और हमने प्रत्येक को नाम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि धर्म सभा एक गहरे धार्मिक माहौल में आयोजित की गई थी जहां अंतर धार्मिक प्रार्थना और 3 दिवसीय आध्यात्मिक साधना ने प्रतिभागियों को यह समझने के लिए तैयार किया कि कार्यक्रम के दौरान पौत्र आत्मा उन्हें क्या बताने वाले थे। बुल्गेरियाई ऑर्थोडॉक्स कलीसिया के प्रादि धर्माध्यक्ष एवं सोफिया के महाधर्माध्यक्ष नियोफाइट का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रादि धर्माध्यक्ष को फेफड़े की बीमारी के कारण 4 महीने पहले अस्पताल में भर्ती किया गया था। बुधवार शाम करीब 10:30 बजे सोफिया स्थित मिलिट्री मेडिकल अकादमी में उनका निधन हो गया। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।